नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास कल। लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होगा एयरपोर्ट। राज्य में खाद बिक्री में अनियमितता करने वाले 1300 से ज्यादा विक्रेताओं पर कार्रवाई। और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित। चित्तौड़गढ़ जिले के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट बाद की वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए कल कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जाएगा। शंभूपुरा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हवाई अड्डे में 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन और 3,200 मीटर लंबा रनवे विकसित किया जाएगा। इससे A321 श्रेणी के विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। इस परियोजना से कोटा के कोचिंग संस्थानों और पर्यटन क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 2 पेयजल योजनाओं नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी भूमि पूजन किया जाएगा। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
लगभग 5,184 करोड़ रुपए की सम्मिलित लागत वाली इन परियोजनाओं से कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ जिलों के हजारों गांवों और ढाणियों के लाखों परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के तहत इन परियोजनाओं में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पंप हाउस और लंबी पाइपलाइनों का जाल बिछाया जाएगा जिससे हाड़ौती क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। यह आयोजन हाड़ौती संभाग की बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को एक नया आयाम देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
राज्य विधानसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च तक जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के अनुसार कल और परसों सदन की बैठक नहीं होगी। आगामी 9 मार्च को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राजस्थान आयुर्वेद तथा योग चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। पंचायती राज संशोधन में पंचायत चुनावों के लिए 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी तरह 10 मार्च को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक और महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। नगर पालिका संशोधन विधेयक में भी निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज विधानसभा में बताया कि उर्वरकों के साथ किसानों को अन्य उत्पाद जबरन बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि विभाग ने प्रदेश में 11,938 निरीक्षण किए हैं। इस दौरान उर्वरकों के 18,319 नमूने लिए गए। मंत्री ने बताया कि अनियमितताओं के कारण 765 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 381 फर्मों की बिक्री पर रोक लगाई गई है और 169 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं। डॉ. मीणा ने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स और निगरानी समितियां बनाई गई हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज विधानसभा में घोषणा की कि नागौर के डेगाना क्षेत्र में स्कूलों के लिए दरी पट्टी खरीद में हुई कथित गड़बड़ी की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने जांच पूरी होने तक डेगाना के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। सदन में भाजपा विधायक अजय सिंह किलक द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में श्री दिलावर ने स्वीकार किया कि विधायक कोष से हुई इस खरीद में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार बड़ी संख्या में दरियां खरीदी गईं, लेकिन वे विद्यालयों में मौजूद नहीं हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का भारत के औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान है। ओडिशा में कटक के मुंडली में CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये बल देश भर में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
CISF हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहाँ पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में CISF उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। सभी बलिदानी CISF के कर्मियों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके परिजनों के बलिदान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ी भूमिका दी है।
आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। ये वेबसाइट विभाग की सेवाओं, स्वयं सेवकों और आम जन के बीच समन्वय का काम करेगी। पोर्टल पर विभाग की योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पंजीकृत स्वयं सेवकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विभाग की अपनी वेबसाइट होने से अब सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। डॉ. अनुज ने ये सफलता अपने तीसरे प्रयास में प्राप्त की है। इससे पहले वर्ष 2023 में उन्होंने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में SDM के पद पर नियुक्ति दी गई। डॉ. अनुज ने वर्ष 2023 में जोधपुर एम्स से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। डॉ. अनुज की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बधाई दी है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में प्रदेश के सभी जिलों से 200 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। खेल और युवा मामले विभाग के सचिव नीरज के पवन ने इस मौके पर बताया कि विकसित भारत संकल्प के तहत ये कार्यक्रम पहले राज्य के सभी 41 जिलों में आयोजित किया गया था।
यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो राष्ट्र स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी, उनको आगे बढ़ने में, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में जो सरकार का सपना है सहयोग देने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विकसित राजस्थान 2047 का एक विजन बनाया गया है, उसी को साकार करने के लिए सरकार के विभिन्न अंग, विभिन्न विभाग और उसी तर्ज पर जो यूथ ऑफ राजस्थान है वो दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान के 205 युवा आज के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज जैसलमेर के टेडानसर मैदान में 3 दिन के चादर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं और श्रद्धा के साथ चलने पर लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पाली जिले में अवांछित बच्चों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए राजकीय बांगड़ अस्पताल और सोजत सुमेरपुर मार्ग पर स्थित किशोर संरक्षण गृह में पालना गृह संचालित किए जा रहे हैं। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ. टीना अरोड़ा ने आम जन से अपील की है कि वे बच्चों को असुरक्षित स्थानों पर छोड़ने के बजाय इन पालना गृहों में ला कर दें।
हमारे पाली जिले से 2 बच्चियां इंटर कंट्री अडॉप्शन में, अमेरिका में उनका अडॉप्शन हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी हमारे यहाँ के बच्चे दत्तक ग्रहण में गए हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से उनके अडॉप्शन ऑर्डर पारित किए गए थे। इसलिए मेरी आम जन वासियों से अपील है कि जो ये घटनाएं हो रही है, बच्चों को कंकड़ पत्थर, झाड़ियों, मंदिर की दीवार, सीढ़ियों आदि पर छोड़ा जा रहा है, मेरा उनसे निवेदन है बच्चों का सुरक्षित परित्याग करें, उन्हें फेंके नहीं, उन्हें हमें दें।
जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक मस्जिद की दीवार गिरने से 19 लोग घायल हो गए। ये हादसा फिरदौस मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को सवाई मानसिंह और कांवटिया अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 11 लोगों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार घटना के समय मस्जिद परिसर में करीब 1000 लोग मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शिलान्यास कल किया जाएगा। राज्य में खाद बिक्री में अनियमितता करने वाले 1300 से ज्यादा विक्रेताओं पर कार्रवाई और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित। चित्तौड़गढ़ जिले के डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।